ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने तराई मधेश के जिलों में उत्पन्न स्थिति के संबंध में मधेश केंद्रित राजनीतिक दलों, नेताओं और मधेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों से की अलग अलग बैठक। कहा, नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के लिए विभिन्न जिलों में निकाली गई सद्भाव रैली। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से पर्वतारोही निर्मल पुर्जा सहित 6 नेपाली हैं लापता। और पिछले 24 घंटों में लगभग 60,000 प्रवासी स्पेन में हुए दाखिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सुनसरी सहित विभिन्न जिलों में उत्पन्न संवेदनशील स्थिति के समाधान, नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं व सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि राज्य के सभी निकाय उच्च सतर्कता के साथ सक्रिय हैं। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक पहुंचना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाना और घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराना है। उन्होंने बताया कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता और सरकार के बीच विश्वास और सद्भाव का मजबूत सेतु बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कठिन और आपातकालीन परिस्थितियों में जनता के बीच पहुंचकर उनके सुख दुख में सहभागी होना जनप्रतिनिधियों का मुख्य दायित्व है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेशों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तराई मधेश की हालिया स्थिति पर सिंह दरबार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि संविधान के पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन से ही सभी प्रदेश मजबूत बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशों और स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का बजट समावेशी है और सभी क्षेत्रों और समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन और राष्ट्रीय एकता की किसी भी प्रकार राष्ट्रीय एकता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक में तराई मधेश के विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा, सुशासन और संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और मांगे रखी। मधेश केंद्रित राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया है। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक के बाद नेताओं ने पत्रकारों से कहा कि इस प्रकार की पहलकदमियों की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि तराई के कुछ जिलों में हाल में उत्पन्न स्थिति के समाधान के लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील और समाधान को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सुनसरी के दीवानगंज में हुई घटना के बाद देश के विभिन्न जिलों में राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज ने सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की संयुक्त अपील की है। वीरगंज में सामाजिक सद्भाव रैली निकाली गई, जबकि धनुषा में सर्वदलीय बैठक में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। हिन्दू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। बांके और बारा सहित विभिन्न जिलों में भी राजनीतिक दलों ने संयुक्त अपील जारी कर अफवाहों, घृणा फैलाने वाले बयानों और भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह किया। इसी क्रम में काठमांडू के माइतीघर मंडला में संयुक्त छात्र संगठनों ने सामाजिक सद्भाव के समर्थन में रैली निकाली। विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेताओं ने शांति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, कानून के शासन और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होने का सभी नेपाली नागरिकों से आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने की पहल पर आज सिंहदरबार में हुई बैठक के बाद मुस्लिम और हिंदू समुदाय के नेताओं ने एक संयुक्त अपील जारी करते हुए किसी भी प्रकार की हिंसा, घृणा और विभाजनकारी गतिविधियों को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने सदियों से कायम धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने वाली विभिन्न गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। संयुक्त अपील में स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायों, राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज, संचार माध्यमों तथा सभी संबंधित पक्षों से संवाद, सहयोग और जिम्मेदार भूमिका निभाकर शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की पुनर्स्थापना में सक्रिय योगदान देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने सुनसरी, सिरहा सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर कानून विरुद्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने, पीड़ित परिवारों को आवश्यक राहत, उचित मुआवजा और घायलों के निशुल्क और प्रभावी उपचार की व्यवस्था करने का भी सरकार से अनुरोध किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुनसरी के दीवानगंज सहित तराई मधेश के विभिन्न जिलों की मौजूदा स्थिति पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव और पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा के साथ चर्चा की। शीतल निवास में हुई बैठक में सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने सरकार से सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों के सहयोग से स्थिति का समाधान करने का आग्रह किया। सुनसरी के दीवानगंज की घटना के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। नेपाली सेना सहित तीनों सुरक्षा निकायों की संयुक्त तैनाती से कानून व्यवस्था में सुधार आया है। हालांकि सुनसरी, धनुषा, सिरहा और परसा के कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग के पीड़ित परिवार और घायलों से मुलाकात के बाद स्थिति सामान्य बनाने में मदद मिली है। सरकार और पीड़ित परिवार के बीच 7-सूत्रीय समझौते के बाद अंतिम संस्कार का वातावरण भी तैयार हुआ। गृह मंत्रालय ने बताया है कि शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास जारी है। वहीं नेपाल पुलिस ने मधेश और अन्य संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी है। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा कि काठमांडू घाटी की सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी विद्यार्थियों को निकटवर्ती विद्यालयों में स्थानांतरित कर पढ़ाई जारी रखी गई है तथा परिवहन, छात्रवृत्ति, स्कूल सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय सभा में मंत्री पोखरियाल ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सुशासन एवं योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं और शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बैठक में सांसदों ने तराई मधेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, घायलों के उपचार और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 18 गते दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुए 10 पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार हिमस्खलन के समय प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा के नेतृत्व में दल शिखर पर था। दल में नेपाल की निर्मल पुर्जा सहित 6 नेपाली और अन्य देशों के पर्वतारोही शामिल थे। बरामद 4 शवों में से 2 की पहचान हो चुकी है जबकि अन्य 2 की पहचान की जा रही है। खराब मौसम के कारण आज खोज और बचाव अभियान को रोक दिया गया जिसे कल शनिवार से फिर शुरू किया जाएगा। चितवन के भरतपुर स्थित बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल की 500 शैयाओं में से 350 शैयाओं पर मरीजों को निशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उमेश नेपाल के अनुसार जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को दिन में 3 बार भोजन सहित निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि केबिन, पेड वार्ड, पोस्ट ऑप, एसडीयू, आईसीयू और डे केयर सेवाओं का लाभ लेने वाले मरीजों से अस्पताल न्यून शुल्क लेता है। कैंसर मरीजों के लिए प्रमुख उपचार केंद्र माने जाने वाले इस अस्पताल में नेपाल के विभिन्न जिलों के अलावा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी मरीज उपचार के लिए आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सियूटा में पिछले 24 घंटों के दौरान मोरक्को से लगभग 60,000 प्रवासियों के प्रवेश करने से गंभीर मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। स्पेन सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में लोग समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों से सीमा पार कर सियूटा पहुंचे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के लिए मानव तस्करी गिरोहों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के बीच फैली गलत सूचनाओं के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सीमा पार करने की कोशिश की। घटना के दौरान भगदड़ और समुद्र में डूबने जैसी दुर्घटनाओं में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई। हजारों प्रवासियों के पहुंचने से सियूटा में राहत एवं बचाव व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ गया है। स्पेन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जबकि यूरोपीय संघ ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। स्पेन और मोरक्को के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने तथा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने तराई मधेश के जिलों में उत्पन्न स्थिति के संबंध में मधेश केंद्रित राजनीतिक दलों के नेताओं और मधेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों से की अलग अलग बैठक। कहा, नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के लिए विभिन्न जिलों में निकाली गई सद्भाव रैली। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से पर्वतारोही निर्मल पुर्जा सहित 6 नेपाली हैं लापता। और पिछले 24 घंटों में लगभग 60,000 प्रवासी स्पेन में हुए दाखिल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।